पृष्ठ संख्या 125। समझ तो गया देवी, पर ईर्ष्या हो रही है उस अधेड़ ब्राह्मण से। मैंने चारों ओर दिशाओं में जिधर भी तुम मानपूर्वक मुंह मोड़ लो, तुम्हें देखने के लिए चार चार चेहरे धारण कर लिए, आठ आठ आंखें बना ली, तुम्हारी मनुहार के लिए चार मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतारोगी उस मरते ब्राह्मण को। औरों की मधुमति भूमिका में मान मनुहार का आस्वादन लेने की इच्छा तुम्हें भी हो रही है? अच्छा, यही मान लो। पर क्या स्मरण नहीं आता? पहचानते नहीं यह ब्राह्मण है कौन? यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही अब शापभ्रष्ट ब्रह्मा होगा, और उसमें मैं स्थित होंगी शब्द बनकर, और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह तरह सहस्र सहस्र रूप धारण कर खेला करेंगे। यह कहते कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ पड़ा, और वह मलय पवन भी सरसता हुआ एक ओर निकल गया। तीन, तत्पश्चात क्या हुआ इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को साप दे डाला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम इत्यादि कहकर। अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं था, बल्कि शील और आचार से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं शीलवाचक थे। यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश शील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया, उस ब्राह्मण का अधिकार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था, अथवा उन सबके लिए था जो इस प्रकार की क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूं इस घटना में मर्माहत तो सभी हुए थे। निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था, नदी की रक्तनात धारा अशुचित होकर ठिठक गई थी, मरुत विकल प्राण हो उठे थे, क्रूर स्वपदों ने शर्म से माथा झुका लिया था, और विषधर सर्प उदास होकर अपनी बांबियों में लौट आए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया था, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द वैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक छपक कर गिर रहा था। महाराज, बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो। मैं कल सात मद चाक और कृष्णसार मांस दक्षिणा में दे दूंगा, मान जाओ बाभन देवता। पर ब्राह्मण अडिग रहा। काम मोहित दो जीवों का वध करने पर भी तुम प्रिय और श्रेय के अधिकारी रहोगे, यह असंभव है। बड़ी अनुनय विनय करने पर भी जब ब्राह्मण देवता नहीं माने, तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंदर नियति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा ही बोले, ए पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इतिहास, नियति के निर्देश पर मरना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया, उसकी वपु विस्तीर्ण होने लगी, और लगा कि उसका माथा आसमान फेंक जाएगा। पृष्ठ संख्या 126। पर वह ब्राह्मण भी बड़ा ही दबंग निकला, उसकी तर्जनी उसी तरह उठी रह गई, और वह भी निर्भय बोला, अथवा यूं कहूं कि उसके भीतर की सरस्वती बोली, तो तुम भी सुन लो, यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूं काव्य, हम और तुम दोनों सतीर्थ हैं, पर जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राज्य लिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थलोभ के कारण धरित्री का सारा दान सारा धृत और मधु चाबियों से ऐंठ कर ताले में बंद कर देते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं, मेरा कंठ एक क्रुद्ध श्लोक बोलने को विकल हो जाता है। तुम अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाशव्यापी विस्तार दिखाकर, अब मेरा भी बल देखो। वह क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला है अवतरित हो रही है पुनः सरस्वती का नया वाहन बनकर, चीरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो, वह मेरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। वह मरी चिड़िया मनुष्य को सत्चित और आनंद का बोध देगी अपने नए छांदस रूपांतर में, और तब तुम्हारे धनुष बाण, तुम्हारी चाबुके, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करुण स्वर में रोने लगेंगे तुम इस मरी चिड़िया की नई महिमा को देखकर। मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र राजनीति कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमट कर छोटा हो गया, पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया, और उधर आसमान के नील ऊर्ध्व के उत्तरकाल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रौंच, वैसी ही देह, वही डैने, वही चंचु, परंतु इस बार रंग शुद्धता श्वेत था। गोया मृत्यु की नदी में स्नान करके उसका काम लोभी मरकत वर्ण धुल गया है और वह निरंजन श्वेत बन उठा हो। मुझे लगा कि मैं 20वीं सदी के एक मामूली मृदंग वादक अपनी नीरस गद्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजार वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूँ और उस वांगमय अगोचर संबंध को सुन रहा हूँ। वह मरा हुआ पंछी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला, बंधु मैं लौट आया हूँ शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपने कल कूजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा रसद शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता रहूँगा। मैं कैसे वहाँ पहुँचा, क्यों वहाँ पहुँचा, इस अद्भुत दृष्टिकल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात नहीं। तब तक ब्राह्मण माथे पर ओंकार धारण करके प्रजापति का रूप ले चुका था, जिसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भूत सरस्वती जाग उठी थी।